थोड़ा सा यहाँ हो जाए तो एक और मौलवी साहब को बिठा दें, इधर आ जाए। मेरा कुछ अदा करो थोड़ी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، حضرت والا، ارے اتنی دور اس طرف کیوں بیٹھو؟ سامنے بیٹھو نا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ مومن کی جو روح ہے، اس روح کو اللہ تعالی سے قرب اور تعلق ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ، جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ہماری روحیں اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور یہاں تک کہ اگر مچھلی پانی میں ڈوبی ہوئی بھی ہو، ڈوب گئی ہے پانی میں، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اگر پانی کی ظاہری سطح اور اوپری سطح سورج کی گرمی سے گرم ہو گئے، مچھلی کی پانی کی اوپر والی جو سطح ہے اگر سورج کی گرمی سے وہ گرم ہو گیا، تو پھر مچھلی کیا کرتی ہے کہ پانی کی گہرائی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی سے اس کو سکون ملتا ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عبادات کرتے ہیں، ان کی اس عبادات سے ان کو اللہ تعالی کا قرب اور تعلق ملتا ہے، اور یہ ان کی روحوں کے چین اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. اور اگر عبادت کے ساتھ گناہ کا بھی اہتمام کریں گے اور گناہ کرتے رہیں گے اور گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے پانی کو گرم کر دینا، और जिस तरीके से मछली को गर्म पानी में सुकून नहीं मिलता, तो वो इबादत जो गुनाहों के साथ मिली हुई है, ममजूज बिल इस्म है, यानी गुनाहों के साथ मिली हुई है जो इबादत, उनकी वजह से हमारे दिलों को कुर्ब और चैन नहीं मिलता और ठंडक नहीं मिलती, बावजूद इबादत करके, बावजूद जिक्र करके, बावजूद तिलावत और दूसरे नेक काम का एहतमाम, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। वजह क्या है कि इबादत तो है लेकिन तर्के मासियत यानी गुनाहों को छोड़ने का एहतमाम नहीं है। उसकी वजह से बावजूद जिक्र तिलावत और इबादत के भी हम गुनाह नहीं छोड़ते। और फरमाया हजरत वाला दावत रकातुम ने, फरमाया कि जब मछली को पानी से निकालते हैं तो वो तड़पती है, यहां तक के बाज़े मछलियां ऐसी भी होती है जो कई कई फुट ऊंची उछलती हैं, आठ आठ दस दस फुट, बाज़े उससे भी ज्यादा तड़प तड़प कर उछलती है। और फिर जब उनका दाव लग जाता है तो उछलकर दोबारा पानी में चली जाती है। हजरत वाला दावत बरकातुम ने फरमाया कि जब मछली तड़पती है तो उसके तड़पने का मकसद पानी में आउट करना है, यानी लौटना है, और अगर तड़पने के बाद वो पानी में जाने में देर करेगी तो उसकी हयात और जिंदगी और उसकी सांस बाकी ना बचेगी, और जितनी पानी में जाने में उसको देर होगी उतना ही उसके तड़पने की रफ्तार में कमी वाकई होती चली जाएगी। नतीजा ये होगा कि अपनी जगह फिर तड़प कर फिर वो जान दे देगी और मर जाएगी। फरमाया उसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह से उसको तड़प होती है, वो तड़पता है क्योंकि सुकून नहीं मिलता। वल्लाह मेरे मुर्शिद दावत बरकातुम फरमाते हैं कि अगर गुनाहों में सुकून मिलता तो ये बदमाशी की जिंदगी गुजारने वाले नींद की गोलियां क्यों खाते, अपने मालो दौलत के बावजूद इनको सुकून क्यों नहीं है। फरमाया उसकी वजह नाफरमानी का न छोड़ना है और गुनाहों में मुलव्वस रहना। दादा फरमाया कि अगर कोई अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के अंदर गुर्बत में फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारता है उसके सुकून और चैन को बादशाह नहीं समझ सकता, और मालदारी के अंदर माल के जैसे एयर कंडीशन अपने घर में रखता है, बल्कि सेंट्रली एयर कंडीशनड घर बनाता है वो अपना, कि पूरा घर हर जगह एसी चल रहा है, मरकजी तौर पे उसने बना लिया, लेकिन गुनाहों की नहुसत की वजह से वो एयर कंडीशन की ठंडक उसके खाल को तो ठंडा कर देगी, लेकिन मेरे प्यारे शेख दावत बरकातुम फरमाते हैं उसके दिल पर जो अल्लाह ताला के अजाब के जूते और अल्लाह ताला के अजाब की जो गर्मी होगी वो एयर कंडीशन की ठंडक उसको दूर नहीं कर सकती। इसलिए जब इंसान गुनाह करता है तो तड़पता है। फरमाया जिस तरीके से मछली तड़प कर अगर दरिया के अंदर और पानी के अंदर जल्दी आउट कर जाए और लौट जाए तो फिर उसको सुकून मिल जाता है। इसी तरह से अगर मुसलमान उस गुनाह का इर्तिकाब करे, अपनी नालायक तबीयत नफ्स की गुनाह पसंदी की आदत के हाथों मजबूर होकर अगर वो ये गुनाह करता है तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कम से कम इतना तो करो कि तौबा करने में देर मत करो। पहले तो यही काम अच्छा नहीं है, गुनाह करना और गुनाह की आदत को तौबा के सहारे पर अपना ओढ़ना और बिछोना बना लेना, यह अलामत है कि इस शख्स के दिमाग अल्लाह ताला की अकल, अल्लाह ताला के अता करदा वो नूर जो अकलों को अता फरमाते हैं, इसका दिमाग और इसका सर खाली है उस, और हमाकत भरी हुई है उस सर में, कि गुनाहों को अपना ओढ़ना बिछोना बनाता ही है। और गुनाह के तौबा के सहारे पर गुनाह करना, मेरे प्यारे शेख दामत बरकातुम फरमाते हैं कि तौबा के सहारे पर गुनाह करना ऐसा ही है कि जैसे किसी के घर में पूरी दुनिया की सबसे शानदार और बेहतरीन मरहम और ऑइंटमेंट या क्रीम रखी हुई है, जो कि जले और कटे को फौरन इंस्टेंट रिलीफ, फौरी तौर पर उसको अच्छा कर देने वाली और फौरी तौर पर उसकी इस तकलीफ को दूर करने वाली भी हो। लेकिन फरमाते हैं कि कोई दुनिया में कोई बेवकूफ आदमी भी उस मरहम के सहारे पर कभी अपनी उंगली को ना काटेगा और ना जलाएगा, कि भाई मरहम तो रखी है, क्या है, जला लें मरहम लगा लेंगे, काट लें मरहम लगा लेंगे, है कोई ऐसा आदमी? तो हजरत ने फरमाया उसी तरह तौबा, अच्छा वो जो मरहम है वो फौरी जरूरत के लिए होती है, इंतहाई जरूरत, अचानक जरूरत पेश आ गई इसलिए रखते हैं घर में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी। दादा फरमाया उसी तरीके से ये तौबा उस जरूरत के तहत है कि जब इंसान से वो भूल और वो चूक और वो खता हो, कि जिससे वो अपने मालिक के कुर्ब से दूर चला जाए, तो उस वक्त के लिए तौबा का सहारा अल्लाह ताला ने अपने कर्म से रखा। लेकिन फरमाया कि तौबा के सहारे पर गुनाह करना ये हमाकत की निशानी है। तथा तौबा के सहारे पर गुनाह न करें कि अभी तो गुनाह कर लूं फिर मैं तौबा कर लूंगा। मेरे प्यारे शेख दामत बरकातुम फरमाते हैं कि ये इंतहा दर्जे की हमाकत और बेवकूफी है। लिहाजा जिस वक्त सालिक तड़पता है तो उस तड़प से उसके अंदर तकाजा होता है कि मैं तौबा करूं, गुनाह की नहुसत से जो तड़प पैदा होती है। लेकिन जो तौबा करने में जो देर करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है, मेरे मुर्शिद ने फरमाया अजीब बात, फरमाया कि मछली को समुन्दर से या दरिया से निकाला, अब वो मछली तड़प तो रही है लेकिन कहती है चलो जरा कुछ देर में यहां भी एंजॉय करूं, जरा मैं उछल कूद कर रही हूं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जरा मैं उछलूंगी कूदूंगी, दरिया में उछलने का मौका नहीं मिलता, समुन्दर में चलो मैं जरा सी साइड पर साहिल पर और समुन्दर और दरिया के किनारे जरा चड्डी पहनकर थोड़ी देर वॉक कर लूं और रनिंग कर लूं और एंड जॉगिंग कर लूं, चलो मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ब्रिस्क वॉक करूं, ताकि डॉक्टर ने कहा है कि भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है तुम चहलकदमी क्या करो, कहा चलो अब दरिया से निकले चलो चहलकदमी कर लें, दरिया में तो मौका मिलता नहीं है, तो इतनी देर में उसकी हयात बचेगी, वो फौरन जाने कर कह डॉक्टरों की ब्रिस्क वॉक, उनकी जॉगिंग, उनकी रनिंग एक तरफ, पानी में रहना, मेरे मुर्शिद फरमाते पानी में रहना मछलियों के लिए जरिया हयात है, सबब हयात है, अल्लाह ताला ने उनके लिए सबब रखा और इस सबब के मुसब्बिब अल्लाह है, ये सबब अता फरमाने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह ताला ने पानी को मछली के लिए सबब रखा, सबब हयात, जैसे हमारे लिए अल्लाह ताला ने हवा को सबब हयात रखा। तो जिस तरीके से मछली तड़प कर पानी में जाती है, मेरे मुर्शिद दामत बरकातुम फरमाते हैं जब आशिक आशिक की, और अच्छा मछली का फरमाया तड़प कर पानी में आ जाना یہ اس بات پر دلالت ہے کہ مچھلی جو ہے پانی سے محبت کرتی ہے. اپنی پسندیدہ چیز دیکھے کہ اچھا چلو بعد میں کھائیں گے, بعد میں دیکھیں گے, اس کا مطلب یہ محبت نہیں ہے. کیونکہ انسان کو جب اپنی پسندیدہ چیز اور جس چیز سے محبت ہو فوراً اس کو لینے کی فکر کرتا ہے, صحیح ہے نا جناب, قاعدہ ہے نا. تو مچھلی اسی طریقے سے مچھلی کا پانی کی طرف لپکنا یہ پانی سے محبت کی علامت ہے. فرمایا بندوں کا اللہ تعالی کی طرف لپکنا یہ اللہ تعالی سے عشق اور محبت کی علامت ہے. اور جو ظالم توبہ کرنے میں دیر کرے اور اللہ تعالی کو راضی, اللہ تعالی کو ناراض رکھنے پر راضی ہے, یعنی ہمارا گناہ سے توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالی کو ناراض رکھنے پر راضی ہیں. اللہ اکبر, ہمارا گناہ کے بعد توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالی کو ناراض رکھنے پر راضی ہیں. گناہ سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں نا, اور دیر کرنا ہماری رضا اور خوشی سے تو ہے, ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالی ناراض رہیں. کیا محبت اسی کا نام ہے؟ کیا ایمان کا تقاضا یہی بات, ایمان کا تقاضا اسی بات کا متقاضی ہے, اور محبت کا تقاضا کہ ہم اپنے محبوب کو ناراض رکھیں. تقاضائے محبت تو یہ ہے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ, آہ نہ دیر کر. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. تو میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. میرے مرشد دعوت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا توبہ کے اوپر. فرمایا کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا اول من سمی بی امیر المؤمنین فیما بین الاصحاب, کہ یہ پہلے ہیں کہ جن کو امیر المؤمنین کا نام دیا گیا, اور ان کو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کا نام پیر چنگی ذکر کیا. چنگ جو ہے یہ ایک موسیقی کے آلات میں سے ہے, آلات گناہ اور آلات موسیقی, گانے بجانے کا ایک ذریعہ. تو وہ جو پیر چنگی تھا اس کا نام اسی نام پہ کی طرف منسوب کر کے ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ چنگ بجاتا تھا, آواز صدائے بلبل اور نوائے بلبل کی طرح, اور فرمایا کہ جب وہ چنگ بجاتا تھا تو چرند اور پرند وہ بھی محو حیرت ہو جاتے تھے. انسان تو انسان, چرند و پرند بھی مست ہو جاتے تھے. آوازیں اس خوش نوا اپنی آواز کی وجہ سے, نتیجہ یہ تھا کہ اس کی آواز کے عاشق آگے پیچھے گھومنے والے, اور اس کی وجہ سے اس کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی. انڈا پراٹھا مل رہا ہے, कोई उसको खड़ा गोशा खिला रहा है, कोई चिकन कढ़ाई खिला रहा है, कोई उसको सेवन अप पिला रहा है। खूब खातिर मुदारात उसकी हो रही है, शायद किसी ने नस्वार भी खिला दिया। तो अब उसको मखलूक उसके पीछे पीछे। मेरे प्यारे शेख दामद बरकातुम फरमाते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आलम यह हुआ कि उसकी आवाज की वो खूबसूरती, खुशनवाई, वो सदाए बुलबुल, वो नवाए बुलबुल, आवाजें जाग में तब्दील हो गई। जाग कहते कौवे को, आवाज उसकी भद्दी हो गई। वो जो पहले सुरीली आवाज निकलती थी, अब वो फटे हुए ढोल की तरह हो गई। नतीजा ये हुआ कि जितने वो आशिक जो उसकी आवाज के आशिक थे, आगे पीछे फिरने वाले और हदिये तोहफे गिफ्ट और तहाइफ देने वाले, मोबाइल मिल रहा है कभी जनाब, मोबाइल में कोई बैलेंस डाल के दे रहा है, कुछ खिला पिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं, जूते ला के दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें। नफ्स परस्त जो अपनी हराम नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने माशूक हराम इश्क के अंदर जो फिदाकारियां दिखाते हैं, गोया वो उसके साथ थी। नतीजा ये हुआ कि जब उसका आवाज का वो जादू खत्म, सारे उशाक भी, ये याल हसीनों का है कि जो आशिक जिन माशूकों के हुस्न पर नाज करते हैं और अपने माशूकों के हुस्न की मदासराई करते हैं, तारीफें करते हैं, सब किस लिए? बदमाशी के लिए। किसी को हुस्न के बादशाह बोलते हैं, किसी को मलकाए हुस्न बोलते हैं। और अगर उसकी आवाज में कशिश हो तो उसका नाम रखा जाता है मलकाए तरन्नुम। लेकिन हुस्न एक जैसा नहीं है। ये सूरज का, मेरे शेख दामद बरकातुम फरमाते हैं, सूरज का तुलू और उसका गुरूब बड़े बड़े हसीनों के हुस्न को बुढ़ापे में तब्दील कर देता है। बादशाहों पर यह सूरज का जो तुलू और गुरूब है, बादशाहों की ममलिकत को गुरूब डुबा देता है, ये मालदारों को फकीर बना देता है और बड़ी अपनी ताकत पर नाज करने वालों को बुढ़ापा दिखाता है। जो सीना तान कर चलने वाले हैं वो खमीदा कमर हो जाते हैं, टेढ़ी कमर, उसको क्या कहते हैं? खमीदा कमर। जवानी का जोर है ना, ऐसे चलता है गरेबान खोलकर, किसको टक्कर मारी, उसको टक्कर मारी, कोई होश नहीं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सीना तान कर चलने वाले है ना, ऐसे ना, वो फिर ऐसे होते हैं कि नहीं होते? ये इसको कहते हैं खमीदा कमर, इसको और कमान जैसी कमर भी बोलते हैं। ये तमाशा सबके साथ है, हर जवान के को ये बात पेश आनी है, इल्ला ये कि कोई इमरजेंसी वीजा लगा तो पता चला पहले ही उड़ गया, क्योंकि मौत के वक्त अल्लाह ताला जानने वाले हैं, इधर बिठा दो। वो अल्लाह ताला जानने वाले कि मैंने अपने इस बंदे को कब बुलाना है। यह आलम है हर हसीन के साथ होने वाला ये तमाशा। उधर उधर बिठा दे, उधर एम या बेटा पीछे जाओ, तुम इधर बैठ जाओ ना इधर। अरे कहां टक्कर मार रहे हैं जनाब, थोड़ा सा पीछे हो जाए ना। हाँ बस करीब ही बैठे हैं, घबराए नहीं। ये आलम है, सारे बाकमाल बेकमाल होने वाले हैं। और जिन हसीनों का हुस्नो जमाल है वो हुस्नो जमाल बुढ़ापे से बदलने वाला है। अब चाहे कोई साहिबे कमाल अपने कमाल पर नाज करे, ये उसकी बेवकूफी। और साहिबे जमाल या साहिबाए जमाल, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो अपने हुस्न पर नाज करके अपने उस हुस्न को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करती है, तो इस मर्द को या इस औरत को खून का आंसू रोना पड़ेगा अपनी हमाकत और बेवकूफियों पर। क्योंकि इसके बदले में क्या मिलेगा? चंद रोज के लिए माल, बदमाशी, कमीनापन और बेगैरती के वो हरकतें जो इसको सुकून ना दे सकेंगी। माल तो आ जाएगा इसके पास, सही होगा ना दादा, लेकिन वो अल्लाह ताला के आजाद के जो जूते दिल पर पड़ रहे हैं वो जूते इसको चैन और सुकून नहीं दे सकेंगे। बावजूद ये फूलों की सेज पे, पहले जमाने में ये जो फाहिशा औरतें होती थी ना, इनके आशिक इनको फूलों पर लिटाते थे, मनो मनो फूल बिछाकर उस पर लिटाते थे। ये उसकी गोया की कदरदानी थी। लेकिन जब वही बुढ़ी हो जाती तो याद रखिएगा, फिर वही फूल भी कांटे बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, गर तू खाही आयन गम शादी शबद, अगर आप चाहें तो गम की जात को, आयनियत को खुशी से तब्दील फरमा दे। और आयन बंदे पाए आजादी शबद, आयन वो चीज जो कि गुलामी के लिए होती है, आप चाहें तो उसी को आजादी बना दे। यह आपकी कुदरत है। गर तू खाई आतिश आप खुश शबद, अगर आप चाहें आग को मीठा पानी बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को गुलो गुलदार बना दिया, बर्दन व सलामन बना फरमा दिया। और गर न खाही आतिश आप खुश आतिश शबद, और अगर आप चाहें वो पानी जो प्यास को बुझाने का जरिया बढ़ता है, वही पानी प्यास बढ़ाने का जरिया बनेगा। गुर्दों को हुक्म दे दे, हुक्म फरमा दे फेल हो जा, अब डॉक्टर कहता है पानी मत पीना। जिसके गुर्दे फेल हो जाए डॉक्टर उसको पानी पीने से मना करता है, कहता है जितना पानी पियोगे डायलिसिस करना पड़ेगा। क्या अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत को छोड़कर और उनकी कुदरत के अंदाजे कर किन हराम लज्जतों से हम चैन और सुकून तलाश करते हैं। लहजा मेरे मुर्शिद दामत बरकातुम फरमाते हैं कि वो आशिक भी अपनी हमाकतों से बाज आए, कि जो अपनी जज्बा इश्क को, मोहब्बत को अल्लाह ताला पर फिदा करने के बजाय गैरों पर कुर्बान कर रहे हैं, इस अपनी हमाकत से बाज आए। और वो माशूकाएं, वो हुस्न जमाल रखने वाले और वालियां अपने इस हुस्न जमाल को जो हरामकारी और बदमाशी से सब माल के हुसूल, हराम लज्जतों और हराम शहवतों के हुसूल का जरिया बना रहे हैं, बना रही हैं, इनको भी एक दिन खून का आंसू रोना पड़ेगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा। वही हाल पीर चंगी का हुआ। नतीजा ये है कि अब कोई दाद रस्सी करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, फाके होने लगे। मेरे मुर्शिद दामत बरकातुम फरमाते हैं, इस कैफियत को देखकर, जमाने की बेवफाई को देखकर वो दिल बर्दाश्ता हो गया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ये दुनिया वाले तो बेवफा हैं, वफा की कीमत से बेखबर हैं। ये दुनिया वाले तो बेवफा हैं, وفا کی قیمت قیمت سے بے خبر ہیں. تو ان کے دل دے کے میں اپنی جا کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں؟ یعنی میں خود اپنی ظلم اپنی جان پر ظلم کیوں کروں اور اپنی جان پر ظلم کر کے ان بے وفاؤں سے وفا تلاش کروں؟ دادا پیر چنگی کا یہی حال, اب رو رہا ہے. اب اس کے جو عاشق پرستار فین, وہ جو فین ہر وقت گھوم رہے آگے پیچھے, وہ جو پنکھا جھل رہے ہیں, پنکھے ہلا رہے ہیں, پنکھا تو لگا ہوا ہے بجلی نہیں ہے, لیکن فین لگا ہوا ہے بجلی نہیں ہے, کہ جی ہمارے بڑے فین ہیں, ہمارے بڑے پرستار ہیں اور ہمارے بڑے فین ہیں, فین تو لگا ہوا ہے بجلی نہیں ہے, فین چل ہی نہیں رہا, اب پنکھا ہی نہیں چل رہا. یہ عالم ہے, یہی حال ہوتا ہے. یہ دنیا میں بڑے بڑے یہ جو محبوبان مجازی معشوقان مجازی یہ اسٹار اور ان بدماشی حرام کاری شو بز شو لائف اس کے اندر اس کے ذریعے سے بس کہ جی ہمیں بس مال مل جائے اور ہم اپنی کچھ زندگی عیش میں گزار لیں, تو میرے پیارے دوستو ان کا انجام بھی سوچنا چاہیے. لیلاؤں کے عشق پہ اپنی زندگیوں کو لگانے والوں کے انجام کو دیکھو, سوچو, پوچھو ان سے. یہی حال پیر چنگی کا ہوا کہ بڑا جو جس کے بڑے بڑے کانسرٹ ہوا کرتے تھے اور بڑی پبلک آتی تھی جھومتی تھی, وہ پیر چنگی بڈھا ہوا. پیر کہتے بانے بڈھے کے ہیں اور اصطلاح میں پیر اس رہبر کو بھی بولتے ہیں. فارسی میں تو اس کے معنی بڈھے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس رہبر کو کہتے ہیں کہ جن کی صحبتوں سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. تو اس پیر چنگی چنگ بجانے والا بڈھا جس کے بڑے بڑے کانسرٹ ہوا کرتے تھے, لوگ آ رہے ہیں اور بڑے ہدیے تحفے اور نوٹ لٹائے جا رہے ہیں, اب وہی آواز اس کی آواز کے اس کے جادو آواز میں جادو نہ رہا, اب کوئی پوچھنے والا نہیں. اب وہ دل برداشتہ ہو کر اب رو رہا ہے کہ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف کے قبرستان چلا گیا. اب وہ وہاں زار و قطار رو رہا ہے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گیا جا کر مرنے کے لیے کہ اب تو میرا کھانا پینا بند, کوئی پوچھنے والا نہیں, اب تو بس میں مر جاؤں گا. لگا ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر لیٹ گیا. یہ حرام کاریاں ایسے ہی دل برداشتہ کرتی ہیں کہ عاشق یہاں تک کہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے. یہ عالم ہے, گناہوں میں سکون نہیں ہے نا, اس لیے خودکشی تک پہنچا دیتے ہیں. اب وہ وہاں پر اللہ تعالی نے اس پر ایک کرم کیا, اس کے دل میں خیال ڈال دیا کہ اب ساری دنیا نے تو اس سے بے وفائی کری, چل تو اب اللہ تعالی کو پکار. تو اس کی دل شکستہ ٹوٹا ہوا دل کی کیفیت ایسی تھی, اس نے اشک بار آنکھوں سے اور روتے ہوئے اللہ تعالی سے فریاد شروع کر دی, اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رونے لگا, گویا کہ بس زبان حال اس نے یہ کہا کہ سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے اور سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ سے اسے عرض کیا کہ اللہ ساری مخلوق جو میرے پیچھے گھومتی تھی آج میں نے ان کی بے وفائی دیکھ لی, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے ان وہ ایام وہ جو وقت اس بات پر ضائع کیے کہ بڑا مال جمع کروں گا, بڑی عیاشی کروں گا, بہت شاندار مکان بناؤں گا, سامان راحت سامان عیش و عشرت یہ سب جمع کر کے بڑے مزے کی زندگی گزرے گی, اتنا مال جمع کروں گا, سات پشتیں کھائیں گی. لیکن آج پتا چلا کہ آہ جس پر بھروسہ کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. تو اللہ بس اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں कि अपने कर्म से मैं मेरी किफालत आप फरमा लीजिए, आप मेरी दाद रसी फरमाइए, मेरी फरियाद रसी फरमाइए, मैं आपसे फरियाद करता हूं, आपसे रोता हूं कि अल्लाह अब आप मेरा सहारा हैं, आपके अलावा सारी दुनिया से मेरी निगाहें हट गई, बस आप ही हैं। अब वो बुढ़ा पीर चंगी टूटी कब्र में आंसू से रोता हुआ अल्लाह से फरियाद कर रहा है। मेरे मुर्शिद फरमाते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आराम का वो वक्त था, सो रहे थे कि ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए उमर सोते हो, जाओ मदीना शरीफ के कब्रिस्तान के अंदर हमारा एक बंदा है, उसने हमें पुकारा है। जब सारी दुनिया से वो आजिज हो गया, सारी दुनिया की बेवफाई उस पर खुल गई, उसने अब हमको पुकारा है, अगरचे देर से पुकारा है लेकिन हमारा है वो, जाओ उस बंदे को जाकर मेरा सलाम कहो और उसे जाकर कहो, अब जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, ऐ बंदे घबरा मत, मैंने तुझे खरीद लिया, तेरे इस दिले शिकस्ता हयात शिकस्ता, तेरी इस टूटी हुई जिंदगी और ये बेकार जिंदगी को अब मैं खरीदता हूं, और उसके लिए नान नफके का इंतजाम करो। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, बैतुल माल से लिया सामान, मदीना शरीफ के कब्रस्तान के अंदर पहुंचे, अब तलाश कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आया। मदीना शरीफ दोपहर का वक्त सन्नाटा, फरमाया कि उस सन्नाटे के अंदर तलाश करते करते आखिर देखा तो एक टूटी हुई कब्र के अंदर एक बुढ़ा वो रो रहा है, वो बैठा हुआ सो रहा है, और उसके गाल पर और उसकी आंखों में आसारे अश्के नदामत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको देख रहे हैं, वो खड़ा हुआ, अचानक उसकी आंख खुली, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो डर के कांपने लगा, क्योंकि दुर्रे फारूकी याद आया। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दुर्रा वो याद आया, वो कांपने लगा, समझ गए कि किस बात से डरता है। फरमाया ऐ शख्स घबरा मत, दुर्रे फारूकी तो उन नालायकों के लिए है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की नाफरमानी से दूर करते हैं, असल में तो दुर्रा उनको करीब लाने के लिए होता है। तुझ पर तो अल्लाह ताला ने यह करम फरमाया कि मुझे खुद भेजा और तुझको सलाम फरमाया अल्लाह ताला ने, और तेरे लिए अल्लाह ताला ने जरूरत का इंतजाम किया और यह पैगाम दिया कि जाकर मेरे बंदे से कहो कि मैंने तुझे खरीद लिया, मेरे जामे शिकस्ता को खरीदा मेरे साकी ने। आ मेरे जामे कामिल को तो सभी लेते हैं, हयात कामिल उसके तो सब खरीदार बनते हैं, लेकिन हयात शिकस्ता के खरीदार सिर्फ अल्लाह ताला है। वो करीम के, ये करीम का करम है कि उस जामे शिकस्ता को खरीदने वाला लगा उस बंदे को। हजरत उमर ने फरमाया कि तुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ, तेरे लिए नान नफके का अल्लाह ताला इंतजाम किया, तेरे लिए पैगाम है, तुझे सलाम भेजा। मेरे मुर्शिद दावत बरकातुम फरमाते हैं बस ये सुनना था कि उस पीर चंगी की हालत गैर हो गई, रोने लगा। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह इस कैफियत को फरमाते हैं पीर लर्जा गश्त चू ईरा शुनीद, पीर कांपने लगा, अल्लाह ताला की ये इनायात ये मेहरबानियां सारी जिंदगी गफलत में गुजारने के बाद जब अपने नदामत भरे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, इजहार नदामत किया, तो उनकी तरफ से जो अल्ताफात जो इनायात जो इनामात जो मेहरबानियां मिली, बस शिद्दत मेहरबानियों से वो कांपने लगा। जब जबान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये अल्लाह ताला की करम नवाजियां सुनी उसने, पीर लर्जा गश्त चू ईरा शुनीद, दस्त मी खायद व बर खुद मी तपीद, अपने हाथों को काटने लगा और अपने ऊपर गुस्सा करने लगा कि देखो मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए, अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, दूर रहा, लेकिन उस मालिक का करम देखिए, इस नाफरमानी की हालत में गुनाह को लेकर आया, फिर भी अल्लाह ताला कितना करम मुझ पर फरमा रहे हैं। इस शिद्दत कैफियत से उसने नारा लगाया बांग इज्जत के ए खुदाए बेनदीर, कि अल्लाह या रहमान या रहीम, कि आप मुझ नालायक पर कितना करम फरमाने वाले हैं मेरे गुनाहों की नहुसत के बावजूद। बस क्या शर्म आप शुद्ध बेचारा पीर, शर्म की वजह से वो पानी पानी हो गया। चू बसे बिग्रीस्ट वजहद रफ्त दर्द, जब बहुत रो चुका अब रोते रोते उसका बुरा हाल, और जब रोते रोते उसका दर्द हद से बड़ा, आहो फुगा करते करते तो वो जो चंग उसकी, वो जो गाने बजाने का आला उसके पास था, चंग राजद बर जमीन और खुर्दा कर उसने उसको उठाया और मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए। किसी गुनाह की वजह से मैं अल्लाह ताला से दूर रहा, उसी गुनाह को, उस शहवत को, उस हरामकारी को मैं अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर रखा कि जी इस गुनाह में मुझे बड़ा मजा आएगा। यही तो है ना जी, कि जी बड़ा मजा आएगा। हमारी जिंदगी का सुकून इसी गुनाह में है, इसी बदमाशी हरामकारी में है। चंग राजद बर जमीन खुर्दा कर उठाया उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब क्या आहो फुगा की उसने, गुफ्त ए हिजाबम अज इलाह, उस क्या कहा उसने, सुभान अल्लाह, उस चंग को कह रहा है तू मेरे लिए पर्दा बन गया अल्लाह ताला से, हिजाब बन गया कि तेरी वजह से मेरे मालिक जो इन गुनाहों के बावजूद मुझ पर कितना उसने करम फरमाया, और तेरी वजह से मैं अल्लाह ताला से महजूब रहा, पर्दे में रहा। तो इंसान, अजान की आवाज आती है, अपनी फिल्में, अपने गाने की बदमाशी और अपनी दुकान पर खरीदारों का रश, ये उसको मस्ती में मुबतला करते हैं। और अजान की आवाज आ रही है लेकिन वो नर्म और गर्म बिस्तर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, ये उसे नहीं छोड़ रहा, वो इसे नहीं छोड़ रहा, उसी को अपना कमाल समझ रहा है। अच्छा यार चलो उठ के पढ़ लेंगे नमाज, अरे बाद में नमाज पढ़ लेंगे, अभी तो दुकान पे रश बहुत है, चलो बाद में तौबा कर लेंगे। इतनी मुश्किलों से तो उसका मोबाइल नंबर मिला है, जरा पहले कुछ दिन बातें तो कर लें उससे, अभी तो वो पट चुका, अरे बाद में कर लें, अभी शादी हो जाए फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, अरे अभी तो जवानी है चलो बुढ़ापे में रख लेंगे, वरना लोग कहेंगे कि क्या मियां ये तुम किन चक्करों में पड़ गए, कि देख लो दाढ़ी टोपी वालों के साथ क्या हो रहा है, और रखो दाढ़ी टोपी और पहनो टोपी अब दाढ़ी, देख लो क्या हो रहा है। गोया के दाढ़ी और टोपी मौत का परवाना है क्या, जिनके सर पर टोपी नहीं होती या जिनकी दाढ़ी नहीं होती माशाल्लाह वो तो मर ही नहीं रहे ना। वो तो मर ही नहीं रहे भाई, आवे हयात पी लिया उन्होंने, वो नहीं मरेंगे। लिहाजा ये जो गुनाह है ये हमें अल्लाह ताला से पर्दे में रखते हैं, इन हराम शहवतों की वजह से हम अल्लाह ताला के कुर्ब से महरूम रहते हैं। ए हिजाबम अज इलाह, कि तू मेरा अल्लाह ताला से पर्दा बना रहा, कि मैंने तुझे अपना ओढ़ना बिछोना बना के रखा कि बस अरे साहब बस चंग बजाओ, वाह वाह देखो दुनिया तो हमारे पीछे पीछे है ना, कंप्यूटर लैपटॉप है, अब तो देखो कितना मजा है, जमात की नमाजें भी फौत कर रहे हैं, شیخ کی مجلس سے بھی غائب ہیں اور آخر میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. یہ گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھا ہے اور ملا کچھ بھی نہیں. ایز اے من راہ زن تو شاہ راہ, تو ظالم میرے لیے. اللہ تعالی کے شاہراہ اور شاہراہ ولایت, شاہراہ قرب مولا کا تو ڈاکو بنا میرے لیے. یہ گناہ ڈاکو ہیں. دادا میرے مرشد دعوت برکاتہم نے سنایا میرے شیخ کے, فرماتے میرے شیخ یعنی میرے شیخ کے بھی شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خود انہوں نے سنایا. فرمایا ہندوستان میں ایک بچے نے ڈاکوؤں سے رابطہ کر کے اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا. بعد میں پکڑا گیا تو پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہا میں نے ایک انگلش فلم دیکھی تھی, میں نے فلم دیکھی تھی, لہذا ہمارے ہاں اب پہلے تو مرد اب تو عورتیں بھی لڑکیاں بھی ڈاکے ڈالتی ہیں. کیوں؟ ایڈونچر فلم دیکھتی ہیں. اور کشمیر ڈے کیسے مناتے ہیں؟ ایک سیاستدان کشمیر کی حمایت میں سارا دن اس نے تقریریں کی, شام کو تھک کر گھر پہنچا تو بیٹے سے کہا بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں, میں فریش ہونا چاہتا ہوں. کہا ابا کیا کروں؟ فریش جوس لے آؤں؟ کہا فریش جوس تو لے آنا, ساتھ میں ذرا انڈین فلم بھی لگا دو. کیونکہ اظہار یکجہتی بھی تو کرنا ہے. دست دوستی دراز کیا ہے تو اظہار یکجہتی کے لیے انڈین فلم بھی تو دیکھنی ہے. تاکہ کل کبھی کو ہندوستان فتح ہو تو معلوم تو ہو کہ بالی ووڈ میں کون کون سی ہے, کس کو اپنی لونڈی باندی بنانا ہے. معلوم تو ہونا چاہیے, انفارمیشن ہونی چاہیے. کیا عالم ہے میرے دوست. لہذا یہ جو گناہ ہے یہ پردے میں اللہ تعالی کے قرب سے روکنے والے. اس پیر چنگی نے کہا اس سے, کیا عجیب, اے بخوردہ خون من, اے بخوردہ خون من ہفتاد سال, ظالم میں نے تجھے ستر برس, ستر سال تک, ستر برس تک تجھے اپنا خون پلایا. میرے مرشد فرماتے یہ جو گناہ کرتا ہے نا, یہ انسان ایسے ہی تھوڑی گناہ کرتا ہے, اپنے جسم کی طاقت دے رہا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دمشق کے اندر, مہارا شیخ سادی فرماتے ہیں کہ دمشق کے اندر ملک شام کے شہر, اس زمانے میں دمشق کے اندر قحط پڑا, روٹی روٹی پکار رہے تھے. اور فرمایا اس زمانے میں شیخ سادی فرماتے ہیں عشق بازی بہت بڑھ گئی تھی کہ ہر عاشق معشوق کو دبائے ہوئے مختلف پارکوں میں پڑے ہوئے ہیں, نائٹ پارک بھی بنا دیے گئے, انٹرنیٹ کیفے, برگر آؤٹ لیٹس, ہر ایک معشوق کو دبانے کی فکر میں. یہاں تک کہ ایسا تماشا بھی ہوتا ہے کہ مدنی مسجد میں بیان ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے ایک آدمی لونڈا لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسے دین سکھا رہا ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بزرگوں کیا جاتے ہیں وہاں بھی نظر بازیاں حرام کرتے رہتے ہیں. کہ جی اس لڑکے کو ہم ذرا اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں, شیخ کا ادب سکھا رہے ہیں. وہ جو اللہ والے ممبر پر تشریف فرمائے وہ کچھ نہیں سکھا رہے, وہ پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں, جو یہ سکھا رہے ہیں. ایسے ایسے ڈاکو اللہ تعالی کے رستے میں, یہ نفس کی ایسی باریک اور چالیں ہوتی ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ جی میں مال زیادہ کماؤں گا تو مساجد مدارس میں زیادہ دوں گا, چاہے مال کمانے میں جماعت کی نمازیں چھوٹ جائیں, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. لوگ تو بینکوں کا پیسہ بھی مسجدوں میں لگا رہے ہیں, मस्जिद की तामीर सूद के पैसों से हो रही है, सुभान अल्लाह, सूद के पैसों से मस्जिदें चली। अरे साहब हम बैंक में पैसा मिलेगा उससे मस्जिद में लेटरीन बना देंगे और सवाब की नियत नहीं करेंगे। कितनी खैरखाई है दीन के साथ ना, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि 70 बरस मैंने खून पिलाया। मेरे मुर्शिद फरमाते कि दमिश्क में इश्कबाजी हुई, कहत पड़ा, अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, कहत आया, अब सारे आशिक पागल की तरह घूम रहे। फरमाते किसी दिलजने ने छेड़ा, हाँ भाई रोटी चाहिए माशूक, जिसके बगैर तुम्हें चैन नहीं आता, हर वो मोबाइल पे लगे हुए। एक कोने खदरे में चले गए बस। और बातों का तो स्टाइल ही होता है, स्टाइल है भाई, क्योंकि आईफोन है ना उनके पास। तो सही नहीं कह रहा, अल्लाह ताला मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। ये किसी को कहें अपना हाल क्या हो, लेकिन यानी अपने आप से भी खिताब है कि ये जो टेढ़ा कमर कर करके बातें करना। और फरमाते हैं हजरत ने फरमाया, तो जोर से बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, यूरोप से फोन है, यूरोप से, अगले पे रोप डाल रहे हैं। तो जिन गुनाहों को, तो अब वो लगे हुए सब इश्कबाजी, तो उसने कहा हाँ भाई रोटी चाहिए माशूक, तो उसने दिल जले वो आशिक से ने कहा, अरे मारुशूक के मुंह पर झाड़ू फेरो, अब तो रोटी ला कर दो। क्यों, गुनाह की ताकत ही नहीं है ना। फरमाए गुर्दे में पथरी होगी, अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए गुर्दे फेल फरमा दे, हमारे गुनाहों की नहुसत से जो अजाब आ जाए कम है। मेरे शेख ने फरमाया, एक जमाना था, फरमाया कि कराची के एक इलाके के अंदर एक नौजवान सोया, सुबह उठा तो पेट में दर्द, अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उसके गुर्दे जिस जगह लटके हुए होते हैं वहां से गिर गए और पेट में ऐसे ही पड़े। क्या आलम है, क्या हम अल्लाह ताला से, हम क्या अल्लाह ताला से मुकाबला करें, जिनकी कुदरत तो देखें, रोटी ना मिले सारी बदमाशी भूल जाए, ताकत ही ना होगी तो गुनाह कैसे करेगा जनाब। रोटी बंद हो जाए कर सकते गुनाह, या रोटी मौजूद है, ब्लड कैंसर हो गया, अब डॉक्टर कह रहा है मेदे में कैंसर, कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां सुनने को आ रही हैं। अल्लाह अपने क्रम से हिफाजत फरमाए। उस वक्त माल भी होगा, LCD टीवी भी है, इंटरनेट वाईफाई भी लगा हुआ है, गुनाह के मौके भी हैं, क्या आलम होगा, कर सकेगा आप गुनाह। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला की मोहलत से, ढील से फायदा नहीं उठाना चाहिए। जब वो एक दफा खिंचती है ना, फिर मोहलत नहीं मिलती। इसलिए फरमाया जल्दी करें, तौबा कर ले। ए बखुर्दा खून मन हफ्ता साल। मेरे शेख फरमाते हैं जो हम गुनाह करते हैं ऐसा नहीं, अपनी ताकत पिलाते हैं उसको, ताकत खा पी कर जो ताकत आई उसी खून से उसकी परवरिश करते हैं गुनाहों की। ऐसे तो रूयम सियाह पेशे कमाल, सुभान अल्लाह, कि तेरी वजह से मैं अल्लाह ताला के सामने मेरा मुंह काला हो गया, कि आज मैं शर्मिंदा हूं, किस मुंह से अल्लाह ताला से माफी मांगू। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, अरे मियां एक ही मुंह ऐसी से मांगो, ये भी शैतान और नफ्स की चक्करबाजी है। अरे मियां आप कैसे, किस मुंह से माफी मांगोगे भाई, जिस मुंह से गुनाह किया उसी से माफी मांगेंगे, अब और कहां से मुंह बनवा के लाएंगे, लिहाजा तौबा करें, इसी मुंह से करें। इसलिए फरमाया कि आप जल्दी करो तौबा, वो कैसे कि फौरन उस गुनाह को छोड़ दे और उस पर नदामत हो, जैसे पीर चंगी की उस नदामत ने काम किया। کہ اس ندامت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوں کو خرید لیا اور اس نے اس پہ کام کیا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص خدا بنا دیا. حضرت عمر اس کی فریاد سن رہے تھے اور خود بھی وہ رو رہا ہے اور حضرت عمر بھی رو رہے ہیں. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں ایک شعر کسی شاعر کے سنایا کہ اے جلیل اشک گنہگار کے قطرے کو, اے جلیل اشک گنہگار کے قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. کہ وہ جو اشک ندامت, وہ بندہ ندامت بھرے دل کے ساتھ آنسو گراتا اللہ کے حضور میں اور وہ ایک شخص اپنی تسبیح پر ناز کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, میں تو ندامت سے آنسو گرانے والا ہے, اے جلیل اشک ندامت کے ایک قطرے کو, ایک قطرہ ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. سبحان. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک طرف کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ذکر کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے گناہوں پر رو رہا ہے, فرماتے ہیں میں اسی کے پاس جاؤں گا کیونکہ وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو سے رونے والا ہے اس کا بھی کام بنے گا اور اس کے ساتھ والوں کا بھی کام بنے گا. لہذا وہ شخص بھی حضرت عمر کی صحبت میں رہ کر, وہ جو پیر چنگی تھا, وہ خاصان خدا اللہ والا بن گیا توبہ کی برکت سے. میرے مرشد دامت برکاتم فرماتے ہیں معرومی نے ایک عجیب بات فرمائی, فرماتے کہ پیر چنگی کے بوت خاصے خدا, کہ پیر چنگی وہ جو گناہوں کی زندگی گزارنے والا اللہ کے خاص بندہ کیسے بنا. فرماتے ہیں حبذا اے سر پنہا حبذا, حبذا اے جذب پنہا حبذا. یا حبذا عرب لوگ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی خاص یعنی مہمان آتا ہے, خوشی کے مارے بولتے ہیں, گویا کہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. اے وہ جذب پنہا, وہ چھپا ہوا اللہ تعالی کی کشش, وہ توفیق, توفیق ندامت, توفیق عبادت, توفیق آہوزاری جو ہمیں نظر نہیں آتی, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارا کان پکڑ کے مسجد میں لے آتی ہے. ورنہ ہم اپنی طبیعت دیکھیں, گناہ پسندی کی طبیعت, اللہ تعالیٰ کی توفیق گویا کہ ہمارا کان پکڑ کے ہمیں لے آتی ہے اور عبادت اور نیک اعمال کی توفیق عطا ملتی ہے ہمیں اور وہ توفیق نظر آتی ہے بھائی, کسی کو پتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم, اسی کو فرمایا حبذا اے جذب پنہا حبذا. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو 70 برس اس نے گناہ میں زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کے حضور میں اشک ندامت سے اس کا کام بن گیا. فرمایا اسی طرح سے مایوس مت ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو مایوس مت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمل ذنبلا, کہ ایسا شخص جس نے گناہ سے توبہ کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ, زبان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیارا اعلان ہے. رحمت نہیں ہے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. مثلا ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا, اب اس نے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص کوئی آدمی دیکھے, بلکہ پرانے دیکھنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ یار یہ ایسا ہے کہ جس کی کبھی داڑھی نہیں تھی, شکل ہی یاد نہیں رہتی. یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں, کتنا ان کا کرم ہے. لہذا شلوار ٹیکنو سنگھ جی کرتا ہے اوپر کر لے, نماز پڑھنا شروع کر دے, لیکن جماعت سے پڑھنے کا اہتمام, جی میں بہت مصروف تھا, میں بہت بزی تھا اس لیے بعد میں نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لی, لیکن میرے پیارے دوستو ترک جماعت کو, جماعت کی نماز کو جو چھوڑ کر یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے. کہ یعنی گویا کہ نفس کی طبیعت ہوئی تو نماز پڑھ لی, نفس کی طبیعت ہوئی تو بعد میں پڑھ لی, یہ تو اللہ کی غلامی تو نہ ہوئی, یہ تو نفس کی غلامی ہوئی. اس لیے فرمایا کہ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے, پہلی شرط تو ہے کہ گناہ سے فوراً علیحدہ ہو جائے اور دوسری شرط یہ کہ ندامت ہو, ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, اور تیسری شرط یہ پکا ارادہ کرے اب آئندہ میں نے ایسے نالائقی کا کام نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. بھائی موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں, آج کل تو کراچی کا یہ عالم ہے گھر سے نکلتے ہیں خود بھی لرزاں ترساں رہتا ہے, گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں, کہتے ہیں وہاں پہنچ کے فون کر لینا. تو گویا کہ اتنا یقین ہو گیا ہم کراچی والوں کو کہ موت آج آئی ابھی آئی کل آئی, کیوں جناب कैसा आलम है? तो जब मरने का वक्त करीब है, अल्लाह ताला हमारी गफलतों को दूर फरमाए, अपनी फाइल ठीक कर लें। टैक्स ऑफिसर कभी भी आने वाला हो, छापा मारने के लिए आ जाए, कहते जल्दी से फाइल पूरी कर लो, जो फलां चीज गलत चीजें छुपा दो, खत्म कर दो, गैर कानूनी असलाह रखा है, कह रहे भाई इसको खत्म करो, फेंक दो इसको, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम SIUT की इंस्पेक्शन टीम छापा मारने वाली है। मेरे मुर्शिद ने एक और मिसाल दी, लेकिन एक बात है कि मान लो किसी आदमी ने गैर कानूनी असलाह रखा है और बड़ा नाश करता है उस पर, उसको खबर लग जाए कि छापा पड़ने वाला है, अब वो गैर कानूनी असलाह फेंकेगा नहीं फेंकेगा? हजरत ने एक और मिसाल समझाया, लेकिन मैं आजकल मौजूदा हालात पे इसको मुंतबिक कर रहा हूं। अब वो जब गैर कानूनी असले को फेंकेगा तो उसको गम होगा खुशी होगी? बताओ भाई, कुछ तो बोलो यार, खुशी होगी ना? क्यों? क्योंकि अगर वो असला पकड़ा गया तो उसकी वजह से उस पर मुसीबत आने आएगी, और जब असला फेंकेगा कहेगा अब आओ आओ जिसको आना है आओ, CID आए, PID आए, CID आए, जो भी आए छापा मारे, मुझे कोई गम ही नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो फरमाया जिस तरीके से गैर कानूनी असलाह पहनकर अब उसको खुशी होगी, अब वो छापा मारने वाले आते हैं, अरे चेक किया तो कुछ भी नहीं है साहब, हाँ कानूनी असलाह हुकूमत इजाजत देती है, कहा जी ये देखिए ये असलाह है, ये इसका लाइसेंस है, ये देखिए हमारा कानून इसकी इजाजत देता है, तो वो दिखाएगा क्या, देखिए ये है मेरे पास, कहा अच्छा माफ कीजिएगा हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। तो हम फरमाते हैं देखो उस वक्त में वो गैर कानूनी चीज फेंककर उसको खुशी होगी। फरमाया इसी तरीके से जिस तरह से गैर कानूनी चीज फेंककर खुशी होती है, उसी तरीके से गुनाहों को छोड़कर भी खुशी मिलेगी, क्योंकि पकड़ होने वाली है। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि देखो मौत का वक्त आने वाला है, हिसाब किताब होने वाला है, लहजा अपनी गुनाहों की फाइलों को बंद करें, उसको दरिया बुर्द करें, कैसे? तौबा करके कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, बस एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा, आपको राजी और खुश रखूंगा, जो आपकी फरमाबरदारी वो काम करूंगा, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। आपको बड़ी मूछे पसंद नहीं, बड़ी मूछे नहीं रखेंगे, सुन्नत के मुताबिक मूछे रखेंगे। और उसी तरह बालों को काला करना, वो कहते हैं शायर कहता है वो एक मुहावरा मशहूर है ना, जब ओखली में दिया सर तो फिर मूसलों का क्या डर। अरे मियां जब बाजों ने दाढ़ी रख ली, बालिग नहीं होने दे रहे, बालिग कर ले अब क्या डरना, और दाढ़ी तो रख ली लेकिन अभी तक उस पर पेंट चल रहा है काला, वो भी काला पेंट। चलो अगर कोई लाल पेंट करता है तो समझ में आता है कि जी ICI वालों का मैंने तो ब्राउन कलर का पेंट लगाया, मैं काला तो नहीं कर रहा, क्योंकि काला करना तो हराम है, गुनाह है। तो जब इतनी हिम्मत कर ली, अल्लाह ने तौफीक दी, दाढ़ी रख ली, थोड़ा एक कदम और बढ़ा ले, डरता क्या है? अरे भाई अब डरता ही है कि सफेद बाल नजर आएंगे। तो भाई एक बात अर्ज करता हूं कि अगर सफेद बाल नजर आएंगे तो गोया अगले को पता चलेगा कि इसके बाल सफेद हो गए। अगर कोई अपने बालों को काला करेगा तो अगले को पता नहीं चलता कि बालों को काला करता है, बताओ भाई, है ना? ऐसा ही होता है ना, जो बालों को रंग लगाता है सबको पता चलता है ना ये रंग लगा रहा है, तो भी तो उसको पता चल गया, तो फिर छुपाने की क्या चीज हुई? ये तो ऐसे ही होता है ना, बच्चों को देखा ना पीछे ये चीज छुपाते, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपको नजर तो नहीं आ रहा ना, बच्चे देखते ना कैसे छुपा के लेके जाते हैं, वो सब नजर आ रहा होता है और आहिस्ता से कान में बोलते हैं और वो सब सुन रहे होते हैं, कानों से वो सब सुन रहे होते हैं, उसी तरह से चीज छुपाते हैं सब देख रहे होते हैं, छुपा ली छोटे बच्चे करते हैं ना, तो हम भी बच्चों की तरह है, बालों को काला कर रहे हैं अब, और जी अब तो हम जवान है, जवान किसी को पता ही नहीं है। अरे भाई सबको पता होता है, लेकिन बहरहाल शरीयत की इजाजत है, ब्राउन कलर लगा सकता है, और ऐसा पेंट जिसकी शरीयत में काला ना करे। जब इतनी हिम्मत कर ली तो थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा ले, बचा क्या, बस एक आखिरी कदम बढ़ा, उस किले को भी, नफ्स के किले को भी गिरा दे। और ये कहता हुआ गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, है ना, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बस हिम्मत करे। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए अपनी फरमा बरदारी की, और अल्लाह ताला हमारे कुलूब को अपनी तौबा की तरफ रागिब फरमा दे। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है कि अल्लाह ताला तवज्जोह दिला दे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मौलवी पे इल्जाम ना डाले कि देखो मौलवी हमें ऐसा क्यों बोलता है कि दाढ़ी और इस पर, ये समझे अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए तौफीक आ रही है, ये अल्लाह ताला का करम है। बाज मर्तबा ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला मुकर्रर को भी मुकर्रर की जबान से ऐसी बात निकलवा देते हैं जिससे जो उसके लिए फायदेमंद होती है, किसी को उससे फायदा हो या ना हो खुद उसके लिए फायदा हो जाता है उसको। अल्लाह ताला बाज मर्तबा ऐसा भी करम फरमाते हैं, बल्कि बाज दफा नहीं अक्सर ऐसा होता है। हकीम मोहम्मद थानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, कितने बड़े आदमी फरमाते हैं, जब कोई बात अल्लाह ताला अपने करम से कहलवाने की तौफीक अता फरमाते हैं तो हजरत फरमाते हैं मुझको बहुत फायदा होता है, हया आती कि देखो हम किस मुंह से बोले। अब कहें पर्दा करो, अब शरी पर्दे का मसला है कि ना महरम औरतों से पर्दा करे, भाई की बीवी से पर्दा करे और खुद पर्दा ना करे तो क्या शर्म आएगी। यार इंसान को खुद तो हया आएगी कि देखो यार ये क्या काम करता है, कहे बदनजरी मत करो औरतों को मत देखो, फिर शर्म आएगी यार अगर मैं देखूंगा तो लोग कहेंगे यार मुल्ला तू तो देखता है और हमें मना करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई मान लो कोई बेअमल भी है, कोई आदमी तकरीर करता है वो बेअमल है, अपनी तकरीर पर अमल नहीं करता, तो मेहरबानी करके उसकी बेअमली की वजह से हम अमल को ना छोड़े, वो उसकी गलती कोताही है। अल्लाह ताला अपने कर्म से तौफीक से तौबा अता फरमाए और हमारी जो गुनाहों की आदत है उसको अपनी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा ले। दुआ कर लीजिए अल्लाह, या अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा दीजिए, या अल्लाह उस पीर चंगी को आपने अपने कर्म से जो जज्बे पिन्हा अता फरमाया, या अल्लाह वो जज्बे पिन्हा अपने कर्म के सदके में उसी मबदा फयाज से कि जिस मबदा फयाज से आपने उसको अपना जज्बे करम अता फरमाया हमारी जानों को भी जज्ब अता फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारे कुलूब को अपनी मोहब्बत के लिए खास फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारी गुनाहों की आदत को अपनी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा लीजिए, या अल्लाह अपने कर्म से तौफीक तौबा अता फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को हम पर जाहिर फरमा दीजिए और उन पर या अल्लाह मुआफी मांगने और उस पर नदामत की तौफीक अता फरमा, उनको छोड़ देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने कर्म के सदके में तकवा में और अपनी फरमा बरदारी में हमारी मदद फरमा दीजिए, हमारे कमजोर इरादों को मजबूत फरमा दीजिए, हमारी बेहिम्मती को बाहिम्मती से तब्दील फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे नफ्स के कमीनेपन को या अल्लाह ताला शराफत बंदगी से तब्दील फरमा दीजिए, और या अल्लाह अपनी फरमा बरदारी की हयात अता फरमा, हयात तकवा अता फरमा, हयात दोस्ता अता फरमा, हयात औलिया अता फरमा, शरीयत और सुन्नत और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और शरीयत और सुन्नत और हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक खिदमत दीन की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे खताओं को मुआफ फरमा, या अल्लाह अपने खताओं हमारे खताओं को मुआफ फरमा, हमारे कुलूब को अपनी याद की तरफ मुतवज्जह फरमा दीजिए, और या अल्लाह हमारे कामों को आसान फरमा दीजिए, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा दीजिए, हम सबको रिज़्क हलाल आफियत फरावानी और आसानी के साथ अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह ए करीम अपने करम के सदके में या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हम सबको सेहत जिस्मानी अता फरमा, सेहत रूहानी अता फरमा, अहले मकरूज के कर्जों को अदा फरमा, हम में से जो भाई किसी मुसीबत में या हमारे दोस्तों में रिश्तेदारों में जो हमारी माए बहनें किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, या अल्लाह उनको आफियत अता फरमा, या अल्लाह ताला या अल्लाह बे औलाद को नेक साले औलाद अता फरमा, और हम सबको हमारी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना दीजिए, और या अल्लाह अपने कर्म के सदके में या अल्लाह जो शोहर बीवियों पर जुल्म कर रहे हैं उनको जुल्म से बाज फरमा, जो बीवियां शोहरों की नाफरमान बनी हैं उनको या अल्लाह फरमा बरदार बना, हमें अपने बड़ों का फरमा बरदार और बादब बना, छोटों पर शफीक और मेहरबान फरमा दीजिए, और या अल्लाह अपने कर्म के सदके में हमारे शहर में अमन कायम फरमा दीजिए। या अल्लाह अहले शर अहले फितने के शर और फितने से अल्लाह हिफाजत फरमा, अहले फसाद मुफसिदीन के फसाद से या अल्लाह मुसलमानों को हिफाजत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अमन कायम फरमा दीजिए, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए, हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे जिन गुनाहों की नहुसत के सबब या अल्लाह हम आपकी निज़ाम शरीयत से महरूम है उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, और हमारे कुलूब को अपनी याद पर राग़िब फरमा दीजिए। सलामती ईमान सलामती आदा के साथ दुनिया में रखिए और सलामती ईमान सलामती आदा के साथ दुनिया से ले जाइए। या अल्लाह जो मांगा उसको भी अपने कर्म से अल्लाह अता फरमा, और जो बगैर मांगे दोनों जहान की नियमतें अता फरमा, दोनों जान की राहतें अता फरमा, दोनों जान की रहमतें अता फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।